نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورہ رحمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی آیا ہے اس دنیا میں یا کہیں بھی کوئی مخلوق ہے ہر ایک کو فنا ہے سوائے ایک اللہ کی ذات کے کہ جس کو بقا ہے اور جس کو کوئی فنا نہیں ہے جو فنا سے پاک ہے. باقی جتنی مخلوق آئی ہے جو پیدا ہو گیا اس کو ختم ہونا ہے. اور ایک اور جگہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. یعنی ہر چیز خواہ وہ آسمان اور زمین اور ستارے ہوں یا انسان ہوں اور جانور ہوں اور چرند اور پرند ہوں موت ہر ایک کا مقدر ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جو پیدا ہو گیا اس کو مرنا ہے. دنیا میں آ گئے ہیں تو جانا بھی ہے لوٹنا ہے. مگر ایک جو بڑی اہم چیز ہے اس میں اس سے تو کسی کو انکار نہیں کافر بھی کہتے ہیں مرنا ہے. جو اہم چیز ہے جو ایک مسلمان کے لیے عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک اور نئی زندگی کا دروازہ کھولتی ہے. یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ موت کا مطلب ہے ختم ہو جانا پیرش ہو جانا فنا ہو جانا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں موت کا مطلب ہے دوسری زندگی میں انٹری دے دینا. اب وہ زندگی کیسی ہوگی وہاں پہ کیا ہے یہ کوئی سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کوئی فلسفہ نہیں بتا سکتا سبحان اللہ کوئی دنیاوی علم نہیں بتا سکتا. مگر آپ کا دین آپ کو ایک ایک سٹیپ اس جگہ کا بتاتا ہے. اور یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اس میں ہمیں پھر قرآن و حدیث کی طرف آنا پڑتا ہے. یہ کیا ہوگا ان لوگوں نے تو لگا کے دیکھ لیا قبروں کے اندر وہ آلے بھی رکھ کے دیکھ لیے کہ پتہ نہیں کیا کوئی آوازیں آئیں گی کیا ہوگا ہمیں ذرا پتہ چلے اس دنیا کے بارے میں. نہیں پتہ چل سکتا. پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی آپ کو یہ غیب کا علم نہیں دے سکتا. پھر جب آپ قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہیں تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ وہاں کی ایک ایک سٹیپ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اور دیکھو کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم جب کسی سفر پہ جاتے ہیں کہیں دور نزدیک کا سفر ہو ایسی جگہ کا جہاں پہ ہم فرسٹ ٹائم جا رہے ہوں تو ہم ضرور وہاں کی معلومات لیتے ہیں. جو کوئی ملتا ہے اس کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اچھا آپ وہاں سے ہو کے آئیے کیسا ہے وہاں پہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہوں کہیں ایسی جگہ جا رہے ہوں. پھر ہم ویزا لگواتے ہیں پاسپورٹ بنواتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں سب کرتے ہیں نا اور چاہتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ ہو سفر میں ہر چیز پرفیکٹ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. پھر ہم سامان باندھتے ہیں تو سامان میں بھی چاہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ ہمیں روک دیا جائے. ایک آنٹی مجھے ملی پچھلے دنوں کہنے لگی بیٹا میں تو کچھ ایسا لائی نہیں کہ مجھے یہاں پہ کھڑا کیا جاتا. میں نے کہا انسان کتنا ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے بھی ہے نا کہ ہمارا سامان بھی نہ کھلوایا جائے. سامان میں اتنی احتیاط کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم سب جب سفر کرتے ہیں کتنی کتنی دفعہ اس کو وے کرتے ہیں زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ وہاں پہ کھڑے نہ ہونا پڑے. پھر جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تب بھی اناؤنسمنٹ بڑے غور سے سنتے ہیں اس لیے کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بتاؤ. جب دنیا کے سفر کے لیے اتنی احتیاط اور اتنی تیاری اور آخرت جس سفر پہ یقینی جانا ہے اس سفر میں تو پتہ نہیں جاتے بھی ہیں یا نہیں ہیں اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے نہیں جائیں کئی سفر کینسل کر دیتے ہم پھر بھی اتنی احتیاط ہے اور جس سفر پہ 100% جانا ہے چاہے کوئی مسلمان نہیں بھی ہے نا وہ بھی مانتا ہے کہ جانا ہے یہاں سے جانا ہے رخصت ہونا ہے اس کے بارے میں ہم اتنے غافل کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہونا کیا ہے وہاں پہ کیا ہے اس کے بعد کیا میرے ساتھ کیا بیتے گی کیا ہوگا. تو ہمارے پاس تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا. دیکھو ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں इसके बावजूद हम जानना नहीं चाहते और इतने मुश्किल सफर पे खाली हाथ जाने को तैयार हैं, खाली हाथ वहाँ पे क्या लेकर जा रहे हैं, किस चीज़ों की ज़रूरत पड़े। यहाँ से तो एक एक मिनट एक एक चीज़ को देखते हैं, टूथब्रश रख दिया, टूथपेस्ट रख ली, बच्चों फलां चीज़ रख ली, 100 दफ़ा पूछते भी हैं, हालांकि क्या फ़र्क पड़ता है, रास्ते में मिल जाएगी, वहाँ पहुँच के मिल जाएगी, फिर भी हमें छोटी छोटी चीज़ों की फ़िक्र होती है, एंड टाइम तक गाड़ी में बैठते तक पूछते रहते हैं। इतने अहम सफ़र के लिए नहीं फिक्र है हमें कि किन चीज़ों का वेट वहाँ पे ज़्यादा होगा, कौन सी चीज़ें वज़नी होंगी, कौन सी चीज़ें हल्की होंगी, कौन से अमल नहीं लेकर जाने, वहाँ पे चेकिंग होगी, हाँ वहाँ पे रोक ना ली जाऊँ, कौन से अमल होंगे जो मुझे फ़ायदा देंगे, मैं जल्दी आगे चली जाऊँगी, इसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं। इसी को गफलत कहते हैं ना, ये गफलत इतनी छाई हुई है कि हम इसकी परवाह ही नहीं करते। लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ पे ये कह सकता हो कि मैंने तो जाना ही नहीं है जी, मैंने तो यहीं रहना है? कोई भी नहीं कह सकता। अगले चलो 50 नहीं तो 100 साल कह लें, जो अगली सेंचुरी शुरू होगी उस पे हम में से कौन होगा जिंदा? कोई भी नहीं। जितने हम लोग बैठे हुए ना, हम सब की एक दिन खबर आनी है कि फलां चला गया, चाहे हम इसको माने या ना माने, फलां चला गया। और वो जो जाने का दिन होगा वो इसी साल में से कोई एक महीना होगा, किसी साल में से एक महीने की डेट होगी जो हमारी डेथ डेट होगी। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना, फिर क्यों गफलत है? और किसी ने मेरे से पूछा, बड़ा अच्छा उनका सवाल था वैसे, कहने लगी मरने से बड़ा डर लगता है। अच्छा, आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी कि आपको डर नहीं लगेगा, फिर डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं अब डर लगता। देखो डर कब लगेगा? जब तैयारी नहीं होगी। डर तब लगेगा जब अल्लाह से मुलाकात का शौक ही नहीं होगा। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि देखो जब आप, हम जो माएँ हैं यहाँ पे बैठी हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, सबको हमें पता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है कितनी तकलीफ़ दे काम है, कितना तकलीफ़ दे मरहला है या नहीं? हम में से कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे बच्चा नहीं पैदा करना क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। सब उस तकलीफ़ से गुज़रना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो आउटकम है ना वो कितना खूबसूरत है, कि मुझे औलाद मिलेगी। इसकी वजह से इंसान वो तकलीफ़ भी सहने को तैयार हो जाता है, औलाद की खातिर ना। जिसको रब से मिलने का शौक लग जाए ना, वो कहता है ये मौत की तकलीफ़ क्या तकलीफ़ है, उसके बाद ही तो रब से मुलाकात होनी, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये शौक लगना बड़ी बात है ना, कि इंसान को ये शौक हो जाए, एक दूसरे से मिलने का शौक होता है, ये तो इंसान ही है। किसी सेलिब्रिटी को देखने का ही शौक हो जाता है, मिलना तो दूर की बात है, दूर से देखने के लिए कितनी टिकट खर्चते हैं, कितनी कितनी लंबी लाइनों में लगते हैं, और फिर जाके वो जी फलां को देखने जा रहे हैं, वो दूर से नज़र आ रहा होता है, हमने उसको देखा। और जिसको रब से का पता हो ना, उसकी मार्फत हासिल हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, उसके लिए तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि अल्लाह वो कौन सा दिन होगा जब मेरी तुझसे मुलाकात हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह ताला उससे मिलने को पसंद फरमाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मौत की तमन्ना करें, लेकिन फिर उसको इसलिए डर नहीं लगता कि अल्लाह तुझसे मुलाकात, तेरी मुलाकात कैसी होगी जब एक इंसानों की मुलाकात के लिए हम इतने हो जाते हैं, हमारे घर वाले हो तो उनके से मुलाकात करने के लिए इतना सफ़र करके जाते हैं हम, और कितनी सफ़र में भी मुश्किलात हों कुछ हों, लेकिन हम कहते हैं घर वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं कि अगर उनसे मिलना ना हो तो हम कभी भी ना यह सफ़र करें, कितना मुश्किल होता है ना, थका देने वाला और बहुत ही। तो जो अल्लाह से मिलना चाहता हो और उसको इसका शौक हो, वो उसके लिए ये तकलीफ़ क्या तकलीफ़ है? उसके लिए, उसके लिए सबसे बड़ी ये चीज़ है कि बस इससे गुजरूंगा, इस मरहले से तो अल्लाह तेरे से मुलाकात होगी। और इसके अंदर आपको मैं एक हदीस सुनाना चाहती हूँ कि क्या होता है जब इंसान इस दुनिया से जाता है, तो वो जाने का मरहला क्या है। कि अगर मोमिन है اور یہ یاد رکھیے گا، مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں فرق ہے۔ مسلمان جب آپ بن جاتے ہیں، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہو گئے۔ ایمان کا سفر نا ذرا لمبا ہے، ایمان کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، وہ یقین دل میں لانا پڑتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اب ہم اس وقت اس کے اوپر نہیں جا سکتے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب میں فرمایا بدوؤں کو کہ ان کو اے نبی کہہ دیں کہ ابھی تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں آیا ابھی تم میں۔ تو یہ نہیں ہم آٹومیٹیکلی سمجھ سکتے میں نے کلمہ پڑھ لیا بس میں مومن ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ کو کبھی بتاؤں گی کہ ایمان کا سفر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے جو فرشتے آتے ہیں وہ خوبصورت چہروں والے، نورانی خوبصورت لباس والے، اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں اس کے اعزاز میں۔ اور پھر جب وہ اس کے پاس آتے ہیں تو جیسے کوئی کسی مہمان کو لینے آئے، لے جانے کے لیے آئے تو عزت سے لے کے جاتا ہے نا، اس طرح وہ آ کے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، چل اپنے رب کی رحمتوں کی طرف، چل جنتوں کی طرف۔ اور سبحان اللہ، جب میں یہ کل پڑھ رہی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اگر آپ نے مجھے نہ بلایا ہوتا تو میں بھی نہ کھولتی اپنی کوئی کتاب، تو مجھے یہ اتنی پیاری بات لگی کہ وہ روح اتنی آسانی سے نکلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شوق ہے نا اللہ سے ملاقات کا، وہ اس لیے بے چین ہو کے نکلے گی کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ پھر روح اتنی تیزی سے نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ لیدر بیگ میں سے پانی نکالا جائے، مشک میں سے پانی اڈیلا جاتا ہے، اس طرح وہ روح، ایسے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے نا، ایسے وہ روح نکلنا چاہتی ہے، ایسے وہ روح اپنے رب کی طرف جانا چاہتی ہے۔ تو جو ہی وہ روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو وہ جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے اس کی کہ کسی نے ایسی خوشبو کبھی دنیا میں نہیں سونگی ہوگی۔ اور اس کو لے کر اوپر کو چلتے ہیں، جب اوپر کو جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے ہیں، تو آسمان والے پوچھتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسے انٹری نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھو، یہ باتیں تو ہمیں یہ سائنسیں تو بتا ہی نہیں سکتی کہ آسمان میں، وہ تو انہوں نے کہنا دھواں ہے بس اور آسمان کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جو دروازے ہیں ان کے اوپر اجازت لینی پڑتی ہے جانے کے لیے، وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ اور جتنی دیر وہ لے کے اس روح کو جا رہے ہیں نا، رستے میں بھی جو فرشتے ہیں وہ اس کی خوشبو سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ دروازہ پہ اس طرح سے اس کا تعارف کراتے ہیں تو وہ فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جب وہ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کا استقبال کر کے وہ اس کو وہیں نہیں چھوڑ دیتے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ سبحان اللہ، وہ پھر دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ٹیم اس کے ساتھ جا رہی ہے کہ اس کو لے کر جائیں، اکرام ہے نا اس کا، جیسے کوئی بادشاہ کہیں آئے تو اس کو لے کر جایا جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کو ریسیو کرنے۔ یہ پہلے آسمان والے دوسرے آسمان تک لے کر جا رہے ہیں، تو ساتھ ہیں فرشتے کہ وہاں تک تمہیں چھوڑ کے آئیں، اس روح کو وہاں تک لے کر جائیں۔ پھر دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور دوسرے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے آسمان والے فرشتے وہاں سے اس کو ریسیو کرتے ہیں، پہلے والے وہاں رہ جاتے ہیں، دوسرے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس کا ایسا اکرام ہو، جس کی ایسی عزت ہو، تو دنیا میں تو ایسی عزت نہیں ہمیں کبھی ملی جو وہاں عزت ہو سکتی ہے اگر مومن ہو۔ پھر دوسرے آسمان والے ایسے کرتے ہیں، پھر اسی طرح تیسرے آسمان، حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان تک چلی جاتی ہے روح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام علیین میں لکھ لو، یہ نیک لوگوں کی جگہ ہے جہاں پہ ان کی روحیں اور ان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اس کا نام وہاں لکھ لو۔ اور پھر اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے حساب کتاب کے لیے قبر میں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر منکر نکیر آتے ہیں اور وہ اس سے حساب لیتے ہیں۔ اب وہ کیا حساب ہے، وہ کیا سوالات ہیں، पहला सवाल ही वो ये करते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। रब का जवाब कि कौन है तुम्हारा रब, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई कब्र से बाहर खड़ा होकर कहे अब जब तेरे पास फरिश्ते आए तो तू ये जवाब देना, ऐसी बातें नहीं। ये तो आप हम सोचते हैं दुनिया में जैसे हम चीटिंग करा देते हैं, पता नहीं वहाँ पे भी कब्रों में भी हमने चीटिंग करा देनी कि बाहर खड़ा होकर कोई बोलता जाए मैं तुझे जवाब बताता हूँ, तू खुद तो जवाब दे नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। रब का जवाब वही दे सकेगा जिसने वाकई अल्लाह ताला को अपना रब माना सारी जिंदगी, जिसने उसको अपना रब माना, शिर्क नहीं किया उसके साथ कभी। शिर्क क्या है? ये नहीं हम बुतों के सामने खड़े हो जाएं और उनके सामने हाथ बांधे जी ये शिर्क करते हैं हम तो शिर्क करते नहीं, नहीं, अल्लाह की जात में या उसकी सिफात में भी शिर्क करना, किसी और को शरीक करना, ये शिर्क हो जाता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला की एक सिफत है अलवदूद, मोहब्बत करने वाला, इस सिफत में भी आप किसी और को शरीक नहीं कर सकते कि अल्लाह से ज़्यादा किसी और को मोहब्बत देने लगे, ये भी शिर्क हो जाता है। किसी और को अपना राज़िक समझ लें, ये भी शिर्क हो जाता है कि अल्लाह तो मेरा राज़िक है, फलां भी मुझे देता है, मेरी कंपनी भी देती है, मेरा बॉस भी देता है, ये नाराज़ हो गया तो क्या होगा, नहीं, राज़िक तो अल्लाह है। कदम कदम पर इंसान ऐसी बातें बोल देता है जो शिर्क पे मबनी होती हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं शिर्क क्या है, और हम अपने आप को कहते हैं मुसलमान, शिर्क ही नहीं समझ। तो वो ही जवाब दे सकेगा जिसने अल्लाह को अपना रब माना, अपना मालिक, अपना खालिक, अपना राज़िक, अपना सब कुछ देने वाला, अपना सस्टेनर, सब कुछ उसको माना। फिर इसी तरह फिर दूसरा सवाल होगा कि कौन तुम्हारा नबी है, मन नबियों का, कौन तुम्हारा नबी है। इसका भी जवाब आसान नहीं है। आप देखें हम यहाँ पे एक टीचर के सामने खड़े होते ना तो फिर हम कहते हैं अरे अच्छा भला आता था मुझे, पता नहीं उस वक्त ही मेरे ऐसे जहन से निकल गया, भूल गया मुझे। वो क्यों होता है? घबराहट, टेंशन, उसको वहाँ पे अल्लाह ताला साबित कदमी देते हैं जो मोमिन होता है। वो सूरह इब्राहिम में है, अल्लाह ताला उसको साबित कदमी अता फरमाते हैं कि वो बोल सके। आप सोचें ये वो नहीं है, अच्छा मैं उस वक्त ये सोच, इस तरह से थोड़ी होगा जैसे हम अभी बैठे हैं। उनके सवालों के जवाब देना आसान नहीं होगा। अभी हमसे कोई पूछ ले तो हम आराम से बता देंगे, इतनी नीचे ज़मीन के और वो भी मुनकर नकीर, उनके सवाल के जवाब देना, तो अल्लाह ताला उस वक्त हेल्प करेंगे, वो ही जवाब देगा कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो किया, जिसने उनको अपना इमाम बनाया, जो उनके तरीकों पे चला। बाकी कोई नहीं बोल सकेगा। जो लोग बिदतें करते रहे, जो लोग ऐसे काम करते रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के ख़िलाफ़ हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने आज कह दिया कि हदीस को हम मानते ही नहीं, मुनकरीन हदीस बन गए, कैसे वो जवाब देंगे कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तीसरा सवाल ये होगा कि तुम्हारा दीन क्या है। ये भी जवाब वही दे सकेगा जो दीन इस्लाम पे चलता रहा। दीन मीन्स वे ऑफ लाइफ। दीन मीन्स सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई फॉर्म है, जैसे हम फॉर्म्स में रिलीजन के खाने में इस्लाम लिख देते हैं, ऐसे नहीं है कि वो पूछें और हम कह दें कि हाँ इस्लाम, ऐसे नहीं है। तुम्हारा दीन क्या था, यानी तुम्हारा वे ऑफ लाइफ क्या था दुनिया में। क्रिश्चियनों वाला वे ऑफ लाइफ था, काफरों वाला वे ऑफ लाइफ था, बुध परस्तों वाला वे ऑफ लाइफ था, कौन सा था तुम्हारा वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ जिसने इस्लाम को बनाया वो ही जवाब दे सकेगा हाँ ये था मेरा वे ऑफ लाइफ इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम था। वहाँ पे ना कोई झूठ बोल सकता है कि कुछ और हो और मुशरिक हो और कह दे कि मैं तो ये था, मैं तो वो था, ऐसा नहीं कोई कर सकता, चीट नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। इसके बाद एक चौथा सवाल भी होगा, और वो चौथा सवाल ये होगा कि वो फरिश्ते पूछेंगे, अगर उसने सारे सवालों के जवाब सही दे दिए, कहेंगे तुम्हें कैसे मालूम हुआ, तो वो कहेगा मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने कुरान की ऊपर ईमान रखा और मैंने इसके मुताबिक अमल किया, मैंने उसकी तस्दीक की। यानी मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर क्यों आए हैं, कि वो पूछ रहे हैं ना किस तरह तुम्हें पता चला, इस तरह के इस कुरान के जरिए जो मैंने पढ़ा था दुनिया में, मैंने समझा था, मैंने उसकी तस्दीक की थी। और जिसको ये जवाब ना आए उनके बारे में भी हदीस में है, बुखारी की हदीस है वो, जो पहले ही मैंने आपको बताई अबू दाऊद की है, और जो ये दूसरी है कि जो नाकाम होगा इन सवालों के जवाब देने में, तो वो कहेंगे उससे कि तूने ना पढ़ा ना समझा, तो वो कहेगा मैं नहीं जानता, वो कहेंगे ना तूने पढ़ा ना तूने समझा। और उसके बाद हदीस में ये है कि उसके दोनों कानों के दरमियान क्या है, ये सर के ऊपर ऐसा हथौड़ा मारा जाएगा कि उसकी आवाज़ तमाम मखलूक सुनेगी सिवाय जिन और इंस के। क्यों, यहाँ क्यों मारा जाएगा, यहाँ क्यों नहीं मारा जाएगा, यहाँ क्यों नहीं मारा जाएगा, यहाँ क्यों नहीं मारा जाएगा, यहाँ पे क्या है, तुझे अकल किस लिए दी थी, दिमाग क्यों दिया था, इस दिमाग को हर और चीज़ में लगाने के लिए, और यही सबक भूल गया जिसका यहाँ पे सवाल होना था, सवाल भी बता दिए, इससे ज़्यादा आपके लिए क्या, पेपर आउट कर दिया आपके नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन सवालों की तैयारी कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को दफना के फिर मुड़ते हैं तो अपने सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा इसकी तैयारी कर लो, यानी ये कब्र है ना, इसकी तैयारी कर लो। क्या सहाबा नहीं तैयारी करने वाले थे, करते थे वो, फिर भी फरमाया इसकी तैयारी कर लो, यानी तैयारी के बगैर यहाँ ना आना, ये जगह तैयारी के साथ आने वाली है, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चलो क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो ईमान है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन है ना, तुम्हारा तो ईमान है यहाँ पे हिसाब किताब है। और ये ज़िंदगी कितनी लंबी है पता है आपको, अच्छा आदम अलैहिस्सलाम से लेके वो कहते हैं कि अब तक तकरीबन 6000 साल गुजर चुके हैं, ठीक है रफली चलो हम कह देते हैं, और पता नहीं कितने गुजरे होंगे वल्लाहु आलम, चलो 6000 तो हैं। 6000 साल से कई लोग हैं जो वो कब्र की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बरज़ख। इसका मतलब है इस दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में वो कितनी लंबी है, यहाँ पे कितनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी, 100 साल 200 साल शायद उस ज़माने में लंबी ज़िंदगियाँ होती थी, तो 900 साल कितने साल गुजारी होगी, अव्वल तो शायद आदम अलैहिस्सलाम से अब तक पता नहीं कितने ही हज़ारों साल गुजर चुके हैं। सोचें वो उस वक़्त से आज तक वो बरज़ख में हैं जहाँ पे या तो उनकी कब्र जन्नत का बाग बन चुकी होगी और या जहन्नुम का गड़ा बन चुकी होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र दो ही है, या तो जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नुम का गड़ा बन जाती है। इसके बाद जिसके सवाल सही हुए उसके लिए जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और वो कहेगा अल्लाह कब कयामत आएगी कि मैं यहाँ चला जाऊँ। कितनी हसीन बात है, कितनी मज़े की बात है ना। देखो मोमिन के लिए ना ये दुनिया से जाना छुट्टी है, कैद खाने से छुट्टी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन है उसके लिए तो दुनिया कैद खाना है, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ, राइट। मोमिन नहीं वो सब कुछ कर सकता जो बाकी लोग कर रहे हैं, उसकी तो ज़िंदगी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, उसने तो यहाँ से भी बचना है वहाँ से भी बचना है, उसने तो रातों को उठ उठ के रोना है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, पता नहीं मेरे मैं क्या क्या कर बैठा हूँ। वो तो दिन को भी हर हर जगह पे अपने रब से डरता रहता है, पता नहीं कोई गलती नहीं हो गई हो मुझसे, मेरी ज़िंदगी ज़ाया ना हो जाए, यहाँ लगा लूँ वहाँ लगा लूँ, वो तो भाग दौड़ रहा है, वो तो मेहनतें कर रहा है, वो रिलैक्स थोड़ा ही है। तो ऐसे बंदे के लिए क्या है, उसके लिए तो कैद खाने से रिहाई है, छुट्टी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब जन्नत की खिड़की खुली हुई, अब जन्नत की हवाएं आ रही हैं, अब जन्नत के मनाजिर देख रहा है और कह रहा है कब वक्त आएगा कि मैं यहाँ चला जाऊँ। और जो दूसरा है जाहिर है वो दुनिया में भूल के रहा तो उसके लिए जहन्नुम की तरफ की खिड़की खुल गई, अब क्या है उसको तो यही है कि अल्लाह क़यामत कभी ना आए, क़यामत कभी ना आए, क्योंकि अगर क़यामत आ गई तो फिर मेरा क्या बनेगा, फिर यहाँ जाऊँगा। तो देखो दोनों के अंजाम में फ़र्क है ना, इसी वजह से जो तैयारी करके गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तैयारी करके आओ, जो तैयारी करके गया उस बंदे के लिए तो खुशखबरियां ही खुशखबरियां, और जो बग़ैर तैयारी के چلا گیا وہاں اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. وہ جگہ تیاری کر کے جانے والی ہے, اور اس کی تیاری کب ہوگی؟ اس زندگی میں یا اس کے بعد؟ وہ تو رزلٹ کی جگہ ہے. رزلٹ بتاؤ, وہ تو یہاں ہوگی تیاری. تیاری کا ٹائم یہ ہے, تیاری کا ٹائم مرنے کے بعد نہیں ہے. فرمایا وہاں پہ تیاری کر کے آؤ, یہ نہیں کہ یہاں پہ آ کے تیاری کرنا. ابھی تو ہم کہتے ہیں جب ویلے ہی بہت ہیں, تیاری کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ اسی میں سے وقت نکالنا, چاہے کتنے بھی آپ مصروف ہیں. اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہی وہ عمل آپ کر سکتے ہیں جن کا دروازہ بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے جب موت آئے گی. یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نا, تو ہم سلام کریں تو اجر پائیں, ہم کسی کو مسکرا کے دیکھیں تو اجر پائیں, ہم کسی کو پانی پلا دیں تو اجر پائیں, ہم کسی کو اچھا مشورہ دے دیں تو اجر پائیں, ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر لیں تو اجر پائیں, ہم سبحان اللہ کہیں تو اجر پائیں, ہم کھانا کھا کے الحمدللہ کہیں تو اجر پائیں. ہمارا تو قدم قدم پہ اجر لکھا جا سکتا ہے. بس اس توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس زندگی میں تیاری کرنی ہے, ہمیں کچھ لے کے جانا ہے, مجھے کچھ بنا لینا ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے, جب بچیاں کسی کی دو تین بچیاں ہوں تو بچپن سے ہی ان کی تیاری, اب وہ پتہ ہے وہاں پہ مائیں شروع کر دیتی ہیں, اچھا اس کے لیے یہ زیور, یہ اس کی ایک دن شادی کرنی ہے. تو ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں جانا ہے. وہ جوڑ جوڑ کے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھتی رہتی ہیں کہ جب شادی کا دن آئے گا تو یہ کام آئے گا, آج سے جوڑنا شروع کروں گی تو پھر اس وقت کہیں جا کے بات بنے گی نا. تو یہ بتاؤ کہ جس دن زندگی کا خاتمہ ہوگا کیا اس دن ہم سوچیں گے کہ اب ہم صحیح ہوں؟ نہیں, اس وقت نہیں, وقت ہے. آج سے جوڑو گے تو پھر اس دن پاؤ گے اس کو. آج سے جوڑنا پڑے گا, آج سے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھنا پڑے گا, آج سے اپنی تیاری کرنی پڑے گی. آخری دن نہیں تیاری ہوتی کہ جس کے بارے میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ابھی ہم نے انشاءاللہ پڑھنی بھی ہے یہ آیات, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مومنون میں کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے تو ان سے کہیں گے, حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی, جس بندے نے تیاری نہ کی ہو تو اس کے بارے میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے, اے اللہ مجھے ان کو کیا, مجھے واپس جانے دیں. واپس کیوں جانے دیں, کیا تمہیں مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی بتایا, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ وہ کہے گا میں وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہوں جن کو میں نے چھوڑا ہوا تھا, جن کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اب اس کو یاد آیا کہ میں نے وہ کام کرنا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے, اسٹوڈنٹ کو امتحان میں بٹھا دو تو اب وہ کہے ذرا مجھے جانے دے, میں نے تیاری کرنی ہے. کوئی جانے دیتا ہے تب؟ نہیں. اسی طرح جو لوگ اس دنیا کے اندر غفلت میں رہتے ہیں اور کل پہ ٹالتے رہتے ہیں, کل 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 کل, وہ کل کبھی بھی نہیں آنی. موت آ جائے گی, ان کی کل نہیں آنی, وہ کل نہیں آتی. آج آج آج, کیونکہ میرے پاس یہ آج ہی ہے اور ابھی ہی ہے. کل کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ تو پھر کل پہ کیسے ٹال سکتے ہو؟ کل تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے رزلٹ کا ہی دن آ جائے, کل تو ہو سکتا ہے وہ لے کے جانے کے لیے آ جائے, پھر کیا کرو گے؟ کل کا نہ کہو. کل شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان انسان کو کہتا ہے کل کر لینا. جو انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے نا, وہ ہر دن کو قیمتی جانتا ہے, کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس کتنی مہلت رہ گئی ہے, چاہے میں جوان ہوں یا بوڑھا. ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں, ہم کس دھوکے میں ہیں. ہماری کلاس میں ایک اتنی پیاری اسٹوڈنٹ, وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, کراچی میں تھی اور بالکل اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بالکل اچانک, کوئی کسی بلکہ ایک شوق تھا سب کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا. کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کا انجام کس دن, کون سا دن اس کا آخری دن ہے, کب اس کا انجام آ جائے, کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر کیا کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ चलो देखते हैं अगर कौन हमें हेल्प कर सकता है उस वक्त। सूरह कयामा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह अकबर मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, ये आयतें ऐसी हैं, खल्ला इदा बलगत तराकी वकील मन राक, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उसकी जान हलक में आ जाती है ना तो लोग शोर मचाने लगते हैं, और लेके आओ किसी डॉक्टर को बुलाओ, किसी 911 को कॉल करो, किसी उसको बुलाओ कि वज़न्ना अन्नहुल फराक, कि जो मरने वाला है वो जान जाता है कि मेरी वापसी का टाइम आ गया। ये जितना भी शोर मचाते रहे, सब जमा हो गए, सब उसके गिर्द खड़े हुए और कह रहे हैं बुलाओ बुलाओ किसी को, ओ कुछ करो कुछ, कौन हेल्प कर सकता है? इसको पता चल गया बस टाइम मेरा अब ख़त्म है। वतफत साकु बिस्साक, और पिंडली से पिंडली मिल जाती है, इला रब्बी का यौम इदिनिल मसाक, उस दिन तेरे रब की तरफ रवानगी का वक्त है, वो तेरे रब की तरफ रवानगी का टाइम है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही शोर मचाए, लेकर आओ बुलाओ उसको, कहो उसको, कहो उफ ला पानी लाओ, ये लाओ जमजम लाओ, ये करो, कितनी पैनिक मच जाए, कौन इनमें से बचा सकता है तुम्हें? कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया वो दिन तुम्हारे रब की तरफ जाने का दिन है, और उस दिन हम तुमसे ज्यादा, जो तुम लोग खड़े हुए हो ना इसके इर्द गिर्द, हम तुमसे ज्यादा इससे करीब हैं, हम करीब होते हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ने यह समझ लिया था कि हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है और इसकी एक दिन इसको वापस नहीं लौटना? लौटना था, तुम लौटने को भूल गए। देखें लौटना किस तरफ होता है, जहाँ से आए होते हैं, हम किसी जगह जाने को लौटा, मसलन हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे हम लौटने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ी गए थे, हम तो एक नई जगह गए। लौटने किसको कहेंगे? मैं घर लौट रही हूँ, राइट, ऐसे बोलते ना, रिटर्निंग, इसका मतलब है वहाँ से जब लौटने की बात आती है ना तो हम वहाँ से आए, अब हम सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं टू आवर होम, जहाँ से हम आए थे, जहाँ से चले थे, पहली दफ़ा नहीं जा रहे, आए भी तुम वहीं से थे, ये एक सर्कल है समझ लें, यहाँ से शुरू हुआ, जितना मर्जी घूम के आ जाओ वापस वहीं पे जाना है। यही याद कुरान कराता है हमें हर वक्त, वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, और इंसान क्या कहता रहता है, रहना है रहना है रहना है, उसकी पूरी ज़िंदगी बता रही है कि वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता है जैसे रहना ही है, जाना नहीं है, ऐसे ज़िंदगी गुजारता है, उसकी एवरी डे की एक्टिविटीज़ बताती हैं मुझे रहना है, बोल के कोई नहीं कहता, उसका अमल बताता है कि वो ये सोच के ज़िंदगी गुजार रहा है कि मुझे रहना ही है बस, दिस इज़ माई परमानेंट रेजिडेंट, मुझे जाना नहीं है। और एक वो भी आप ज़िंदगी देखेंगे जहाँ पे हर वक्त ये फिक्र होती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और ये बातें सुनने का किसी को दिल नहीं चाहता, तो अब ऐसा मौका था तो ये बातें हो गई, वरना ऑनेस्टली हमारा जी भी नहीं चाहता कि कभी इस तरह की बातें सुने, दिस आर सो डिप्रेसिव थिंग्स। डिप्रेसिव पता है क्यों लगती हैं? इसलिए कि हमारा मज़ा कम होता है, अगर ये बातें सुन ली तो फिर तो याद आएगी हाय जाना है, तो फिर तो मैं डर जाऊंगी और मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो बिल्ली अगर बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो क्या वो सलूशन हो जाएगा? हज़रत अली ने फरमाया इस बारे में कि मौत वो पहलवान है जिसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको गिराया, सबको जलील किया, सबको नीचा किया, और आप देख लो इतने इतने कोई हलाकू खान, कोई चंगेज़ खान, कोई फिरौन, कोई हिटलर, कितने जालिम जालिम लोग दुनिया में आए, हिस्ट्री उनको आज जालिमों के नाम से जानती है, इतने जालिम होते थे कि लोग इनसे थर थर कांपते थे, इतना इनका खौफ होता था, फिर क्या हुआ, क्या हुआ इनके साथ, क्या मौत को हरा सके, क्या मौत से भाग सके? नहीं, मौत ने जब दबोचा ना तो उनसे कुछ नहीं हो सका, कितने ही ताकतवर बन जाओ, कितने ही जालिम बन जाओ, कितने ही बड़े हुक्मरान बन जाओ, कि आपके एक ऑर्डर के ऊपर लोगों के सर कलम कर दिए जाएं, कितने ही बड़े बन जाओ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मौत को नहीं हरा सकते, इसको नहीं पिछाड़ सकते, इससे जितना मर्जी रेसल करो कुछ नहीं हो सकता। कमजोर हो या कोई ताकतवर हो, सबको एक दिन इसका सामना करना है और कोई इससे मुकाबला नहीं हो सकता। जिसका मुकाबला ही आप नहीं कर सकते और जिसके आगे हथियार डालने ही पड़ेंगे, फिर उसके लिए क्यों नहीं तैयारी करते, फिर उसके लिए क्यों नहीं सोचते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, अक्लमंद है वो जो अपनी मौत को याद रखता है। अक्लमंद है वो, इसका मतलब बेवकूफ़ हुआ है जो इसको भूला रहता है। खुद को बड़े अक्लमंद ना समझें कि हम बड़े अक्लमंद हैं कि देखो हम इसको कभी याद नहीं करते और मज़ा कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी है, बड़ी बेवकूफ़ी। और इस बेवकूफ़ी का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब वो आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें ऐसी हैं जो दिलों के जंग को दूर करती हैं। दिल पे भी ना जंग लग जाता है, रस्टेड हो जाता ही है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो ये जंग दूर करती हैं, एक मौत का जिक्र और एक कुरान करीम। मौत को याद किया करो कि मुझे लौटना है, मुझे जाना है। और जब किसी और के हम सुनते हैं तब भी जाके अक्सर अपनी मौत को नहीं याद करते, तब भी अक्सर इधर हंसी मजाक, उधर हंसी मजाक, उधर उससे बातें, उधर उससे बातें। चलो जी हमने ताज़ियत कर ली, वो जो बेचारे का जिसका किसी कोई दुनिया से गया होता है सिर्फ वही अफसरदा होता है, बाकी वाले तो सिर्फ रस्म पूरी कर रहे होते हैं। तब भी नहीं हम मौत को याद करते, तो तब भी नहीं हम सोचते कि एक दिन मुझे भी चले जाना है। और कुरान की तरफ तो वैसे ही नहीं हम आते, तो रस्ट कैसे दूर हो दिल का। दिल जंग आलूद है अंदर, हम बाहर से अपने आप को सजा बना रहे हैं और हमारे दिल कैसे हैं, कभी उनकी भी हालत पे गौर किया कि मेरा दिल तो नहीं जंग आलूद हो गया। अगर जंग आलूद हो गया तो इसको कैसे साफ करूं। बर्तन चमकाने का हमें शौक है घर में, इतनी सी मट्टी पड़ जाए किसी चीज़ पे तो हम कहते हैं कि हाय डस्टिंग करने की ज़रूरत है, और सीनों में दिल लेके फिर रहे हैं जो जंग से भरे हुए, और इसकी कोई परवाह नहीं। तो देखिए जब ना कोई आता है और कोई ऐसी बात करता है ना, जैसे मसलन मैं अब आई हूँ तो आपको ये बात कर रही हूँ, या आप यहाँ पे आए मजलिस में, कभी ये ना समझना कि मैं आ गई और मैंने एक दर्स सुन लिया। ये अल्लाह ताला किसी को भेजता है कहीं कि वो बताए लोगों को, और जो आप आए हैं ना वो भी अल्लाह ने आपको भेजा है कि आप ये सुन लें। यह इस बंदे की अपनी नहीं ताकत होती, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हुज्जत कायम हो जाती है। जो भी मजलिस होती है ना ऐसी भी या कोई भी और मजलिस, अल्लाह की तरफ से एक हुज्जत कायम हो जाती है। समझते हैं हुज्जत को, कि या तो अब ये मजलिस आपके हक में हो जाएगी क़यामत के दिन कि फलां जगह पे मैंने ये बात सुनी थी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, और उसके बाद मैंने इस चीज़ के ऊपर अमल शुरू कर दिया, और उसके बाद मैंने मसलन कुरान सीखना शुरू कर दिया, या उसके बाद ये चेंज आई। और या फिर वही मजलिस ऐसे हो जाती है, क्योंकि ये देखो ये मैं नहीं बता रही, ये अल्लाह का एक मैसेज है आप लोगों के लिए, मतलब मैं तो पहुंचाने वाली, एक चैनल है, थ्रू दिस चैनल आपको पहुंच गया, लेकिन वो बात तो अल्लाह की है ना। या फिर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और हूँ करके उठ के चले जाते हैं, और इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, और उसके बाद फिर किसी और का कोई कहीं और दर्स सुना, कोई लेक्चर सुना, तो अच्छा चलो इन लेक्चर्स में तो रोज़ यही बातें होती रहती हैं, छोड़ो। ऐसे भी करके उठ सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ये आपके हाथ में है कि आपकी ज़िंदगी ना, तो कोई आपको फोर्स कर सकता है, आप जैसे चाहे गुजारे। अल्लाह ताला ने आपको ये आज़ादी दी है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तुम में से जो चाहे नाशुक्री करे और जो चाहे शुक्र गुजार हो जाए अल्लाह का, जो चाहे अल्लाह के आगे झुक जाए और अल्लाह की तरफ आ जाए, और जो चाहे उससे दूर भागता रहे, वो तो आपकी चॉइस है। कोई आपको भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई आपको कह नहीं सकता। हाँ मगर पैगाम पहुंचा देना ये ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि आपको पता चल जाए, और उसके बाद आप जो ज़िंदगी गुजारो वो होश से गुजारो कि अच्छा अब मैं ये कर रही हूँ। तो वही बात है ना, जैसे बदर को यौमुल फुरकान कहते हैं कि इसके बाद जो जिए कुफर के ऊपर तो वो भी अपनी चॉइस से जिए, और जो ईमान लेकर आए वो भी अपनी चॉइस है। इसी तरह हमें जब ऐसी मजलिस होती है तो उसके बाद जो हमारी चॉइस है, फिर हम सोच समझ लिया हमने, अब उसके बाद हमने जो कुछ भी चूज़ किया चाहे हमारी मर्ज़ी है, हम उस पैगाम को एक्सेप्ट कर लें, और हमारी मर्ज़ी है कि हम उसी गफलत के साथ जीते रहें, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वापसी है वो तो यानी लिखी हुई अल्लाह ताला ने, और वो उस वक़्त लिख ली जाती है जिस वक्त इंसान माँ के पेट में होता है ना और उसके ऊपर 4 महीने गुजर जाते हैं, उस वक्त ही उसकी मौत का वक्त लिख दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सिर्फ जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो अपनी हालत को चेंज कर सकते हैं, वो अपने अमल को चेंज कर सकते हैं, वो अल्लाह ताला से अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाने को कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में, बाकी मौत से लड़ना या उसको पछाड़ना या उसको डिले करना या उसको ख़त्म ही कर देना कि मेरे लिए आई नहीं, ये नहीं हो सकता। और देखो फिर उसके बाद अंजाम इंसान का क्या है, कितनी बड़ी इबरत है। कभी इंसान कब्रिस्तान जाके देखा करे, देखो बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं ना शहर के, जिनके घर महलों की तरह होते हैं, वो ऐसे पड़े होते हैं और उनके साथ ही वो होता है वो जो गलियों में आवाज़ें लगा लगा के फ़कीर मांगता फिरता है और 2 निवाले 4 निवाले यहाँ से लेके खा लेता है, वो साथ पड़ा होता है। सब के स्टेटस ख़त्म हो गए, कैसे वहाँ पर पड़े हैं, उसके बाद ये अंजाम है। तो वहाँ पे कब्रिस्तान में देखने को सब इक्वल हो गए, लेकिन उनकी हालतें कब्र में क्या हैं सबकी मुख्तलिफ हैं। हो सकता है कि कोई जो बहुत अमीर तरीन हो वो किसी बुरी हालत में पड़ा, और हो सकता है वो जो फ़कीर था दुनिया का वो किसी आला मकाम में उसकी जन्नत की खिड़की खुली हो। यू नेवर नो, सबकी हालत एक नहीं होती। तो अब हमें जो चीज़ें हम कर सकते हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं जब हम किसी की भी वफ़ात के बारे में सुनते हैं, तो ये आपको बताऊँ, एक चीज़ होती है जो हम अपने लिए कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो हम उसके लिए कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो पॉइंट्स तक के, फिर उसके बाद हम ख़त्म करें कि जो अपने लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने लिए दुआ करें पहले, रब्बी आइन्नी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत, इस दुआ को याद कर लें। इसी तरह और जो दुआएं हैं ऐसे वक्त के लिए, उनको आप मसलन रबी आइनी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत का मतलब क्या कि अल्लाह मौत की डुबकियों और बेहोशियों पे मेरी मदद फरमाना, क्योंकि ये वक्त आना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ये टाइम बड़ा मुश्किल टाइम था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसके बाद मैंने नहीं कभी देखा किसी के ऊपर मौत की सख्ती को कभी बुरा नहीं जाना, जब से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये वक्त देख लिया था। तो अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह उस वक़्त के लिए वो वक्त मेरा आसान कर देना, और ये दुआ किया करें कि अल्लाह उस वक़्त ईमान पे मेरा खात्मा करना, कि मेरी ज़ुबान पे कलमे को जारी फरमा देना, क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं होती कि उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी हो जाए। बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनकी ज़ुबान पे कलमा जारी हो जाए, और ये देखें कि हदीस में आता है जिसके आखिरी अल्फाज ये कलमा होंगे वो जन्नत में दाखिल होगा, इसलिए कि दुनिया से ईमान पे गया। तो अपने लिए इन दुआओं को लाजिम कर लें। फिर इसी तरह सूरह मुल्क रात को ज़रूर पढ़ के सोएं, क्योंकि ये अजाब कब्र से महफूज रखती है। क्या इसी तरह आप अपने लिए नेक औलाद छोड़ें, नेक औलाद छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो औलाद आपके लिए कोई दुआ करेगी, उस औलाद को आपके लिए पता होगा कि क्या करना है। और अगर आपने अपनी औलाद को यही सिखाया कि बेटा दुनिया के बंदे बन जाओ, कोई बात नहीं आखिरत का तो देखी जाएगी, अगर यही सिखाया तो वो आपके लिए क्या दुआएं मांगेंगे, वो आपकी क्या फ़िक्र करेंगे। अब ये देखें कि जिसको पता ही ना हो कि करना क्या है, वो तो बस एक साल के बाद फिर जब एक दिन आएगा तो फिर उसके ऊपर कहीं याद कर लेगा कि मेरे एक माँ बाप थे, उसके अलावा उसको क्या, वो दुनियादारी में इतना छोड़ के आप उसको गए हो कि उसको नहीं टाइम आपके लिए दुआएँ करने का। फिर तो नेक औलाद छोड़ें जो सदका जारिया बने, इसी तरह आप अपने लिए और सदका जारिया के काम करें। मिसाल के तौर पे ऐसी जगह कहीं कोई खर्च करें जहाँ पे कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसी जगह जहाँ पे जारी रहे सदका निकी का काम होता रहे, ताकि हम दुनिया से चले भी जाएं तो फिर वो जब प्रोजेक्ट चलता रहे तो हमारा हिस्सा उसमें पड़ गया हो, ऐसे कामों के अंदर अपना हिस्सा डालें। किसी को खाना खिलाना भी बड़ी नेकी है, बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ भलाई की बात करना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना कि मिसाल के तौर पे आपने किसी बच्चे की कफालत कर दी, उसको हाफिज़ बनवा दिया, जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, आप चाहे दुनिया में हैं तब भी और दुनिया से चले गए तब भी आपको अजर मिलता रहेगा। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखें, उसके लिए भी वर्क करना पड़ता है। शदीद मोहब्बत जब होगी ना तो ना मरने से डर लगेगा, ना जाने से उसके पास डर लगेगा। जो आपका महबूब होता है क्या उसके पास जाने से आपको डर लगेगा? जिससे बहुत शदीद मोहब्बत होती है ना, हाँ अपने अमलों की फिक्र ज़रूर होती है, लेकिन उसके ऊपर गालिब आ जाती है ये कि मेरे अल्लाह से मुलाकात है। तो इतनी मोहब्बत करें कि वो मोहब्बत गालिब आ जाए पूरी ज़िंदगी के अंदर। जो हदीस में आता है ना कि ईमान जो है वो उम्मीद और खौफ के दरमियान है, पूरी ज़िंदगी में तो खौफ गालिब रहना चाहिए। डर डर के इंसान ज़िंदगी गुजारे कि अल्लाह तुझे राज़ी करना है, अल्लाह कमी रह गई है, अल्लाह कोताहियाँ हो जाती हैं, अल्लाह हक तो फिर भी नहीं अदा हो रहा, अल्लाह क्या कुछ कमाई नहीं हो रही, ये खौफ रहना चाहिए। और मरते वक्त अल्लाह से अच्छी उम्मीद का गलबा होना चाहिए। ये नहीं कि ज़िंदगी में अच्छी उम्मीद रखते रहें ओ अल्लाह ने तो माफ़ी कर देना, ओ ये अच्छी उम्मीद से ज़्यादा बेपरवाही है। ये असल में क्या चीज़ है कि इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता ना, तो वो अब क्या करे, ओ अल्लाह गफूर रहीम है, ओ अल्लाह माफ़ करता है, अल्लाह तो गफूर रहीम है, तुम भी माफ़ी मांगते हो, तुम भी तौबा करते हो, तौबा क्या है, तौबा तो अल्लाह की तरफ पलट आना है, क्या तुम भी पलट रहे हो या तुम्हारी सिर्फ तस्बीहें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया ये झूठी तौबा है, ये झूठों की तौबा फरमाया इसको तौबतुल काज़िबीन, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर कोई रिग्रेट ही नहीं है, तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, कोई नदामत नहीं है, तो वो तौबा कैसी हुई? तौबा तो है पलट आओ, जस्ट यू टर्न लेके अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये है तौबा। तौबा का माना समझे फिर सही तौबा कर सकते हैं। तो हम क्या वापस पलटते हैं अल्लाह की तरफ, या अपनी डगर पे सीधे जा रहे हैं और कह रहे हैं वो खुद ही गफूर रहीम माफ़ करता रहेगा? तो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत, इसी तरह कोशिश करें कि अपने जाने को याद करते रहें, अपनी मौत को याद करते रहें कि मुझे जाना है। ऐसी मजलिसों में, ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे आपको याद आए कि मुझे जाना है, ये मेरी परमानेंट जगह नहीं है रहने की, वो है मेरा घर जहाँ पे हमेशा रहना है जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जब तक उठाया ना जाऊँ। फिर कुरान करीम से ताल्लुक़ को मजबूत करें, क्योंकि कब्र के जवाब वही इंसान दे सकता है जिसका कुरान से ताल्लुक़ हो, जिसने कुरान को पढ़ा, उसको सीखा और उसकी तस्दीक की हो। और इसी तरह दूसरे लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएँ और नफ़ामंद बने इंसानों के लिए। जो इंसान नफ़ामंद होता है ना दूसरों के लिए, वो एक तरह से अपनी गवाहियाँ तैयार कर रहा है कि जब वो दुनिया से चला जाएगा वो क्या गवाही देंगे, ये बड़ी अच्छी थी, इतनी काम आती थी मेरे, ऐसे करती थी, ये करती थी। और अगर हमें किसी के परवाह ही नहीं है, बद अखलाक हैं, लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो पता है क्या कहेंगे, शुक्र है हंस कम जहाँ पाक, शुक्र है चलो अच्छा ही गई, चाहे लोगों के सामने ये कहते भी रहें कि हाँ बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उनको दिल में अफसोस नहीं होगा, वो कभी आपके लिए दुआ नहीं मांगेंगे, उनकी गवाही आपके हक़ में नहीं होगी कि अगर आपने लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाया हुआ। चाहे सास बहू का मामला देख लें, चाहे बहन बहन का मामला देख लें, चाहे कोई और रिश्तों का शौहर के साथ देख लें, कहीं पर भी आपने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो रही है, आपकी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ पहुँच रही है और उसकी ज़िंदगी अजीरन हुई भी है, तो याद रखें ये ख़िलाफ़ गवाहियाँ हैं। और जिसकी गवाही लोग भी दें कि अच्छा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, एक जनाजा गुजरा तो सहाबा ने कहा बड़ा अच्छा आदमी था ये, बड़ा नेक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी गवाहियाँ इसके हक़ में कबूल हो रही हैं, जब तुम दे रहे हो ना ये गवाही कि बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा नेक इंसान था, ये गवाही है तुम्हारी। तो ये गवाहियाँ तभी होंगी जब आप लोगों के लिए नफ़ामंद बने, अपनी ज़ात से कोशिश करें लोगों को फ़ायदा मिले। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो हम अपने लिए कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे दुनिया से जाने वाले हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये दुआ की, जिसकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला जो है वो डूबने वाले की मानंद है, कि जैसे डूबने वाला हेल्प हेल्प पुकारता है ना, इसी तरह मरने वाला चाहता है कि लोग उसके लिए दुआ करें, उसको हेल्प चाहिए आपकी दुआओं की। और हमारा हाल ये अफसोस से कहना पड़ता है, ठीक है जो रिसेंटली तो फौत हुए हों, हफ्ता हुआ है, महीना हुआ है, उनके लिए तो दुआएं करते हैं, लोगों को भी कहते हैं आप दुआ करें उनके लिए, लेकिन जिन पे साल हा साल गुजर जाते हैं ना, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, औलाद को भी नहीं याद रहता, किन के लिए दुआएं करनी। बात पुरानी हो जाती है ना तो हम भी उनको भूल जाते हैं, अपनी दुआओं तक में नहीं उनको शामिल रखते। बस जब तक हमारा गम ताज़ा रहता है तब तक दुआएं होती हैं, और उनको तो दुआओं की मुसलसल ज़रूरत है, मुसलसल। लेकिन हम भी ताज़ा ताज़ा गम के साथ ही दुआ करते हैं। गम गया तो अब पार्ट ऑफ लाइफ बन गया कि हाँ हमारे माँ बाप तो फौत हो चुके हैं या हमारा प्यारा फलां फौत हो चुका है, उसके बाद कौन दुआ करता है? उसके बाद क्या उनको दुआओं की ज़रूरत नहीं है? आप भी वो आपकी दुआओं के मोहताज हैं, तो उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। फिर इसी तरह अगर उनके ऊपर कोई कर्ज है तो उनके कर्ज को अदा करने की कोशिश करें कि उनका कर्ज अदा हो जाए, क्योंकि जो रूह होती है वो कर्ज के साथ मुअल्लक रहती है, कर्ज अदा करना ज़रूरी है। तो फाइंड आउट करें अगर उनके ऊपर कोई कर्जा था तो वारिस और लोग मिल के उस कर्ज को अदा कर दें जो उसके खैर ख्वाह हैं, जो उसके प्यारे हैं। हम कभी फाइंड आउट ही नहीं करने की कोशिश करते कि इसका कोई कर्ज था, हम अपने रोने धोने में ही लगे रहते हैं। उसकी फिक्र नहीं हमें ज़्यादा होती कि वो उस बेचारे का कहीं ठीक भी है, कि उसके साथ सब मामला वहाँ पे ठीक हो, हमें अपना गम ही पड़ा होता है कि आए हमें छोड़ के चला गया। उसको नहीं अब परवाह कि उसने आपको छोड़ा, वो तो अपनी एक मुसीबत में पड़ गया कि वो आगे जाके क्या जवाब देगा। ही डजंट केयर कि आप कितने आंसू बहा रहे हैं, उसको ये कि मेरी खलासी हो जाए, क्योंकि उसकी आगे तो बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके कर्ज के बारे में मालूम करें। इसी तरह अगर कोई रोज़े उसके फ़र्ज़ रोज़े रह गए हैं तो उसके वारसों को चाहिए कि वो उसके फ़र्ज़ रोज़े पूरे करें, उसके फ़र्ज़ रोज़े खुद रखें। और अगर उसने कोई मन्नत मानी हुई थी, मसलन हज की मानी हुई थी, उम्रे की मानी हुई थी, या कोई और मन्नत मानी हुई थी कि मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा या कुछ है, इसका पता चल जाए तो उसकी मन्नत पूरी करें, क्योंकि वो मन्नत जो होती है वो अल्लाह के साथ एक प्रॉमिस होता है, उसको पूरी करें। और अगर किसी के वालदैन में से कोई दुनिया से चला जाता है तो उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्त अहबाब के साथ भलाई करें, उनके साथ अच्छा करें। ये भी एक वालदैन के साथ भलाई करना है। जितने उनके जानने यानी उनके जानने वाले थे जिनके साथ वो बैठते थे या कुछ, देखें एक वाक्य आता है इतना प्यारा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं तो वो जा रहे हैं, गधे पे सवार हैं तो जा रहे हैं, तो रास्ते में एक बद्दू सा एक देहाती जा रहा था तो अपना उस सवारी को रोक लिया और उसको अपने साथ बिठाया और अपना जो अमामा था ना अपनी पगड़ी वो उसके सर पे रख दी। अब सहाबा कह रहे हैं कि ये तो बद्दू है, ये तो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, तो आपने जैसे हम किसी को थोड़ा सा भी दे दें वो बेचारा गरीब है तो आपने कहा कि ये तो इससे भी खुश हो जाता था, तो आपने इतना महंगा जोड़ा इसको दे दिया या कुछ, वो इस तरह उन्होंने अपनी पगड़ी वो उसको दे दी। तो वो कहते आप कोई मामूली चीज़ दे देते, आपने इसको दे दी, इसने तो वैसे ही खुश हो जाना था छोटी सी चीज़ से भी। तो फरमाया कि नहीं, इसका बाप उमर बिन खत्ताब का दोस्त था। सुभान अल्लाह, ये कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे मेरे बाप का दोस्त था इसका बाप। सुभान अल्लाह, यानी उसकी इतनी तकरीम की कि इसका बाप, यानी माँ बाप के दोस्त अहबाब से भी नेकी करना, उनको जो प्यारे थे उनके साथ भलाई करना। और जो भी उनके जो मरने के बाद हैं, जो भी दुनिया से चला जाए कोई रिश्तेदार प्यारा, उसके पीछे किसी बिदत को ना करें, ताकि ये ना हो कि उसकी वजह से उसको कोई मसला हो, कोई ऐसी बिदत, कोई ऐसा रोना धोना जो नोहा करना होता है, कोई ऐसी चीज़ें सर को पीटना या चीखना चिल्लाना, इन चीज़ों से परहेज़ करें, या और जितनी भी बिदात है ना उनसे परहेज़ करें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिद्दती की तौबा कबूल नहीं होती जब तक वो बिद्दत छोड़ ना दे। कोई ऐसा काम ना करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ख़िलाफ़ हो, जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। हर एक चीज़ में फाइंड आउट करें कि जो है ना इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म था, क्योंकि ऐसे टाइम्स पे हर कोई आके कहेगा ओ अब ऐसे कर लो फलाना, अब तुम ये 250 सिपारे पढ़ लो, अब फलाने तुम ये कर लो, अब और वो बेचारा जो गम में होता है उसको ना उसकी अकल आदी हुई होती है उस वक्त, जो उसको कहता है वो वैसे करता जाता है। तो नहीं, उस वक़्त भी सुन्नत को नहीं छोड़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं छोड़ना। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो कि आप कर सकते हैं। और इसके अंदर दुआ के लिए मैं कहूँगी कि हर एक को चाहिए कि जो मसनून दुआ के अल्फाज हैं उनको याद कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा प्यारी कोई दुआ नहीं हो सकती जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी मैयत की मगफिरत के लिए सिखाई है। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है वो कि वो अगर नहीं याद अब याद कर लीजिए, और जिनको याद है वो उस दुआ को अपने फौजशुदगान के लिए रोज़ मांगा करें, कभी कभार नहीं कि जब वो याद आ जाए, रोज़ मांगा करें, तभी पता चलेगा आपको उनसे कितना प्यार है। शुरू शुरू में तो सारे ही रोध होके कह देते हैं कि हम बड़ी मोहब्बत है, हमें बड़ा मिस करते हैं, उसके बाद पता चलता है असल मोहब्बत किसको थी, जो दुआओं के तोहफे बेचता है। तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी उनके हक़ में कबूल करे। अब जो इतना कुरान की बात हुई तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे बात एक और बता दूँ, सिर्फ ये कह के भाई आप लोग सारे कुरान करीम को सीखें पढ़ें तो इस पर नहीं मैं छोड़ देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपको ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी क्लास में एक व्हाट्सएप का कोर्स हमने इंट्रोड्यूस कराया है कि व्हाट्सएप पे आपको 1.5 घंटे की क्लास हर हफ्ते मिला करेगी, और वो आप पूरे हफ्ते में अपने टाइम के मुताबिक जब आपको कन्वीनियंट हो, दिन हो या रात, जब मर्ज़ी आप सुन लें। जुमे के दिन आपको वो क्लास भेजी जाएगी व्हाट्सएप पे, और आप उसको वेंसडे तक आपको होगा कि आप उसको सुन लें। और 1.5 घंटा तो इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको पार्ट्स में भी सुन सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। मगर उससे क्या फ़ायदा होगा कि कम से कम हम आज से वो पहला कदम ले लें कि अल्लाह तेरी तरफ हमने कदम बढ़ा दिया। इल्म के रास्ते में अगर इंसान को मौत भी आ जाए ना तो वो भी शहादत है, इसलिए कि वो इल्म के रास्ते पर होता है। ये इल्म का रास्ता इतना प्यारा रास्ता है, और कुरान करीम ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा पढ़ लिया हो या मैं पर्स पढ़ लेती हूँ या जब मुझे टाइम मिलता है, नहीं। याद रखें ईमान जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान घटता बढ़ता रहता है। मसलन आप जब किसी मजलिस में जाते हैं आप खुद देखते हैं ना कि उस दिन आपका ईमान को एक बूस्ट मिलता है, जैसे आपके ईमान को ग़िज़ा मिल गई, जैसे किसी ने पौधे को पानी डाल दिया तो पौधा खिल उठता है ना, इस तरह ईमान होता है। और जब आप भूल जाते हैं, अब आ जाए आज आपने कुछ बातें सुनी, उसके बाद क्या आपको लगेगा हफ्ते भर आपको ये असर रहेगा? नहीं, वो भी अभी ही उतर जाना है, जब हमने घर तक पहुंचना तब तक ही उतर जाएगा। तो ये बातें बार बार सुनने की ज़रूरत होती है। ये कुरान करीम को अल्लाह ताला ने इसका नाम दिया है अज़िक्र, ज़िक्र का मतलब है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिमाइंडर भेजा है जो आपको रिमाइंड कराता रहेगा, अल्लाह की तरफ हमेशा आपको इस रास्ते पर रखेगा, कहीं आप भूल ना जाएँ। तो उसके लिए अब हमने ये कोर्स इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया है ताकि जो लोग बहुत मसरूफ़ हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो कम से कम 1.5 घंटा तो दे सकते हैं। तो ये 1.5 घंटा वो अपनी ज़िंदगी से निकालें कि हफ्ते में 1.5 घंटा बस। उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्म लाई हुई हूँ, जो लेना चाहेगा तो ये आपको फॉर्म दे देंगे, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। ये ऊपर का हिस्सा आप ऐसे फोल्ड करके अपने पास रख लेंगे, और जो नीचे का हिस्सा है वो फिल करके आप उनको वापस दे देंगे। अभी हमारी 3 क्लासेस चुके इसकी हो चुकी हैं, तो आपको कोई कांटेक्ट कर लेगा हमारे एडमिन्स में से, और आप फिर वो इंशाल्लाह उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। तो जो इसमें लब्बाई कहना चाहे, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुझे इसके से कोई ऐसा नहीं है कि हम, पता नहीं लोग सोचते होंगे हर जगह जाते हैं अपने कुरान की तरफ बुलाने की करते हैं, चूँकि हमारी कोई फ़ीस नहीं है ना, तो मुझे आपसे कोई माली लालच नहीं है कि अगर आप आएंगे तो मुझे कोई फ़ीस मिलेगी और मेरा घर चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो पैगाम मुझ तक पहुंचा है मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं आगे पहुंचा दूं। आप लब्बाई कहें या ना कहें वो आपकी मर्ज़ी, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं, मगर मेरा काम है कि मैं आगे बताऊँ, मेरा काम है कि मैं पहुँचा दूँ। तो इसके लिए जो लोग लेना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े कर लें, ये फिर इंशाल्लाह उनको दे देंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।